बेचोगे तुम पैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा पैसा फल पाओगे।
ओम शांति। इस प्रातःकालीन क्लास में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता छोटेलाल भाई जी। करतल ध्वनि से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आपका आज का विषय है संकल्प शक्ति के प्रयोग। बाबा कहता है योग और विज्ञान, है ना? विज्ञान नहीं, ज्ञान विज्ञान बाबा कहता है। विज्ञान माना ही प्रयोग करना। तो बाबा का इतना जो ज्ञान है उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कब कैसे यूज करना है इस पर आप प्रकाश डालेंगे। अपनी इसी विशेषता को लेकर आप समय समय पर भारत भर में भट्टियां कराने जाते हैं। प्रायः मैं कहती हूँ हर हफ्ते या 15 दिन में तो जाते ही रहते हैं, निमंत्रण मिलते रहते हैं और भट्टियां कराने जाते रहते हैं। वैसे आप पिछले 37 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले करीब 30-31 वर्षों से हेडक्वार्टर में मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विशेष करके आपकी जो सेवाएं हैं, आंगन में सिक्योरिटी की सेवा, साथ साथ रात्रि क्लास ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए स्पीकर तय करना और साथ साथ बाबा के घर में ऑलराउंडर रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो अभी हम आपसे सुनेंगे संकल्प शक्ति के प्रयोग कैसे करें। वैसे आपके लौकिक घर में भी गीता पाठशाला चलती है, आपकी लौकिक में 3 बहनें भी ज्ञान में चलती है और उनकी 6 पुत्रियां भी समर्पित रूप से सेंटरों पर रहकर बाबा के कार्य में सहयोगी है। ओम शांति।
ओम शांति। जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हम सभी भी अपने आप से ये पूछें, क्या मेरी स्थिति भी संपूर्णता के समीप पहुंचती जा रही है? क्योंकि संपूर्ण तो हर एक को बनना ही है, किसी की गति स्लो है, किसी की फास्ट है, लेकिन हर एक आत्मा पुरुषार्थ करके अपनी उस संपूर्ण स्थिति की समीप पहुंच रही है। और संपूर्णता की हर एक की स्टेज अपनी अपनी अलग अलग होगी। तो समय तो अंत का समीप आ रहा है, लेकिन हम अपने अंदर ये देखें, चेक करें, क्या मेरा पुरुषार्थ भी वैसा संपूर्णता के समीप का होता जा रहा है? और अगर गहराई से देखा जाए तो पुरुषार्थ का मूल आधार बीज जो फाउंडेशन है वो क्या है? संकल्प। हर बात में संकल्प हमारा क्या है, कैसा है, मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उसी आधार से वैसा हमारा कर्म होगा। पहले बोल, फिर कर्म होगा और वैसा फिर पुरुषार्थ होगा। तो जैसा कि अभी गीत में भी सुना कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो हम हर एक ये भी आपसे पूछ लें कि क्या जो हम बनना करना चाहते हैं हम वही सोचते हैं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं? क्योंकि हम जो भी संकल्प कर रहे हैं उस सभी का, एक एक संकल्प का हमारे मन और शरीर पर वैसा ही असर पड़ रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। पॉजिटिव संकल्प तो पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव संकल्प तो नेगेटिव प्रभाव, या व्यर्थ या साधारण संकल्प तो वैसा प्रभाव। तो इसलिए आवश्यकता है, यदि हमें अपनी उस संपूर्ण स्थिति को पाना है समय को देखते हुए, तो अपनी संकल्प शक्ति को विशेष ध्यान देकर उन्हें व्यर्थ जाने से बचाना है, नेगेटिव होने से बचाना है, समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। जैसे जैसे हमारा संकल्प समर्थ शक्तिशाली बनता जाता है, तो वहां मैं तो यही कहूंगा, बल्कि आत्मा की नहीं बल्कि परमात्मा की, उस सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां हमारा साथी बनकर साथ देने लगती है, उसकी शक्ति हमारे साथ कार्य करने लगती है। तो जो हम बनना करना चाहते हैं वो एक शक्तिशाली संकल्प, अमृत वेले आंख खुलते ही अपने अंतरण भर दो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। बनना नहीं बल्कि यही कहेंगे कि मैं हूं, मन ये स्वीकार कर चले तो जो आप सोचेंगे वैसी वो शक्तियां पावर आपके विचारों में स्थिति में आती चली जाएंगी। तो कभी भी कैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने मन के अंदर कभी कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, क्योंकि एक मुझे याद आता है एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे तो उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई कि हमारा एक एक संकल्प, जिस दिशा में संकल्प, जो भी संकल्प चल रहे हैं, तो जिस लक्ष्य को हम पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या वही विचार मेरे मन के अंदर बार बार आते हैं? जो संकल्प, उनका ये कहना था कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, थोड़ा गहराई की बात है, ध्यान से सुनने की है, जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हर एक ये चेक करे अपने आप को कि मेरे मन के अंदर कौन से विचार सारे दिन में बार बार आते रहते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं कर रही हूं वैसे ही संकल्प बार बार आते हैं। लक्ष्य तो रख लिया जी लक्ष्मी नारायण बनने का, बाप समान बनने का, निरंतर योगी बनने का, विचार चल रहे हो धंधे धोरी के, दुनियावी इधर उधर के, तेरी मेरी के, कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? तो ये जरूरी है कि जो हमने लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर निरंतर बने रहने चाहिए तो हम कहीं उस लक्ष्य को। तो उन्होंने बताया जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो ये अपने आप को एक पुरुषार्थ में चेक करने की बात है कि जो संकल्प हमारे मन में बार बार आ रहे हैं हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो हमने लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार हमारे मन के अंदर निरंतर सारे दिन में चलते रहने चाहिए तो कहीं अपनी मंजिल पर हम पहुंच सकेंगे। तो मैं बतला रहा था कि एक शक्तिशाली संकल्प में कितनी पावर है जिसके द्वारा एक असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। एक जगह हम भट्टी कराने जा रहे थे तो जब प्रोग्राम बन रहा था तो जिस सेंटर पे भट्टी कराने जा रहे थे वहां से एक घंटे की दूरी पर पहले एक सेंटर आता है तो उस बहन जी का फोन आया कि भाई जी सुना है आप हमारे इतना नजदीक एक घंटे की दूरी पर ही भट्टी कराने आ रहे हैं तो एक क्लास कराने हमारे यहां भी आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो आने का साधन क्या है, कुल सुबह 5 बजे अहमदाबाद से ट्रेन चलती है और हमारे यहां लगभग सुबह नहीं रात को 10 बजे ट्रेन चलती है और हमारे यहां सुबह 5 बजे पहुंचती है। उस ट्रेन से आप आएंगे तो आप क्लास के पहले पहुंच सकेंगे, नहीं तो आप वो मुश्किल और ट्रेन से तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने प्रोग्राम बना और उस ट्रेन से हम गए, लोकल ट्रेन थी, रिजर्वेशन नहीं था, टिकट लेकर बैठ के अब सारी रात बैठ के जाना, सुबह क्लास कराना है, थोड़ी थकावट हो जाएगी। तो मैं बाबा को याद कर कह रहा बाबा देखो अभी सारी रात बैठ के जाना, सुबह क्लास कराना, थोड़ी थकावट हो जाएगी, तो हो सके तो कहीं सोने के लिए जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैंने बाबा को याद कर कहा 5 मिनट और 5 मिनट के बाद एक ऊपर की सीट पर भाई बैठा था वो मेरे को कहता है भाई साहब मैं अभी 5 मिनट में उतरने वाला हूँ, आपको सोना हो तो आ जाओ। बस वो 5 मिनट में उतरा और ऊपर जाकर हम सो गए। तो जब सो रहे थे तभी बाबा को याद कर थैंक्स दिया, थैंक्स बाबा आपने सोने के लिए जगह दिलाई। लेकिन मैं भी इस ट्रेन में बैठ गया हूँ और मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। अब इस ट्रेन को राइट टाइम पहुंचाना वो आपका काम है, क्योंकि ट्रेन राइट टाइम पहुंचेगी तभी हम अपने भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। अगर देरी से पहुंची तो पहुंचने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसके पहले वो बहन जी ने फोन पर ये बता दिया था हमारे को कि भाई जिस वो ट्रेन जिसमें आप आ रहे हैं वो ट्रेन रोजाना हमारे यहाँ सुबह 7:30-8 बजे तक लेट पहुंचती है, क्योंकि लोकल ट्रेन है तो सब जगह रुकती हुई आती है, तो तब तक तो हमारा क्लास भी पूरा हो जाता है, तो आपको क्लास तो मिलेगा नहीं, फिर भी आप आइए। तो जब वो बहन जी ऐसे बतला रही तो मैंने अपने मन में ये संकल्प किया कि नहीं बहन जी, जिस दिन हम आएंगे उस दिन ट्रेन राइट टाइम पहुंचेगी, हम क्लास कराएंगे। अब देखो वो तो रोजाना के अनुभव से बतला रही है, लेकिन हमने अपने मन में एक शक्तिशाली संकल्प का प्रयोग किया, पावरफुल संकल्प का। तो ऐसे चले गए ट्रेन बैठ के, और जब मैं बाबा को याद कर कह रहा कि बाबा अभी देखो मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना, सेवा कराने वाले तो आप हो, अब इस ट्रेन को राइट टाइम पहुंचाना वो आपका काम है, तभी हम अपने भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। अगर देरी से पहुंचे तो कोई ज्यादा पहुंचने का फायदा नहीं होगा। ऐसे में याद कर बाबा को सो गया। तो ट्रेन में कैसी नींद आती वो सब जानते हो, कभी नींद लगी कभी खुली। तो रात को एक दो बार जब आंखें खुली तो मैंने देखा ट्रेन सब जगह रुकती हुई जा रही है, लेकिन जब चलती थी तो इतना फास्ट चलती जैसे कि हवा में उड़ रही हो। और वो ट्रेन जो रोजाना सुबह 7:30-8 बजे तक लेट पहुंचती थी वहां, उस दिन वो ट्रेन सुबह 4:45 बजे जाकर खड़ी हो गई। थोड़ा अच्छी तरह बजाओ क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। हम जब ताली बजाते हैं ना तो हमारे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट है सारे अंगों के हाथ के अंदर, तो वो पॉइंट दबते हैं, और पॉइंट दबेंगे तो क्या होगा, एक्टिवनेस रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी, चुस्ती रहेगी। मैं देख रहा हूँ बैठे बैठे एक आध को थोड़ा सा सुस्ती आ रही है, अगर बीच जहां आपको जरूरी लगे वहां बजाएंगे तो एक्टिवनेस रहेगी, तो क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो इस प्रकार से हम चाहे कैसी भी परिस्थिति समस्या क्यों न आ जाए, सारा विश्व ये कह रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम अपने मन में एक शक्तिशाली संकल्प को लेकर चल रहे हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार उसका पालन करके चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आप सोचेंगे वही होगा, ये निश्चित है। इसलिए और बाबा के भी शब्द हैं कि बच्चे कोई भी विघ्न परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने क्यों न आए, लेकिन यदि तुम दिल से याद कर मुझे कहेंगे कि प्यारे बाबा मीठे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाबा तुरंत तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। बाबा कहता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। इसलिए कभी भी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दो। आप में से सभी चाहते हैं जीवन में आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें, पुरुषार्थ में भी, धंधों में भी, कारोबार में भी, सब प्रकार से। तो एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प के अंदर वो भी शक्ति है जिसके द्वारा आप अनेक कार्यों में सफलता की अनुभूति कर सकेंगे। एक छोटा सा एक भाई का बड़ा बिजनेस था, उसने कहा कि भाई जी मेरे को 5-6 साल से बहुत बिजनेस मैंने चेंज करके देख लिए, सब में घाटा घाटा ही होता जा रहा है और मेरे को बड़ा टेंशन हो गया है, योग नहीं लगता है बाबा से और वही विचार बुद्धि में घूमते हैं, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये संकल्प उठते ही 9 बार कर लो रोजाना 21 दिन तक, दिन में भी और रात को भी, एक दिन में 3 बार रोजाना 21 दिन तक, लेकिन सवेरे उठते ही जरूर करना। पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करो, उसके बाद यही संकल्प कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 9 बार यह संकल्प कर लो 21 दिन तक और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। और उसने ऐसे किया, पहले दिन किया कुछ पता नहीं चला, दूसरे दिन किया थोड़ा फायदा, तीसरे दिन और फायदा, चौथे दिन और फायदा, पांचवें दिन और फायदा, ऐसे करते करते जब उसको फायदा होने लगा तो करना था 21 दिन, लेकिन उसने सोचा संकल्प तो करना है, चलो करते जाते हैं, तो करता गया करता गया। 3 महीने के अंदर उसको 70% प्रोग्रेस है। जो बिल्कुल घाटे में जा रहा था बिजनेस, वो 70% प्रोग्रेस है। तो सोचिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। तो कभी भी हम अपने मन में कमजोर अथवा नेगेटिव विचारों को नहीं आने, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो ये ध्यान देकर हम चलें। अभी 2 दिन पहले एक माताजी का फोन था, भाई जी मेरे को, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो फिर मैंने छोड़ दिया, अब ड्रामा में जो होगा वैसा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, और ही उसका पुरुषार्थ में कमजोरी आती गई। अमृत वेला कभी होता कभी नहीं होता, क्लास कभी होती नहीं होती। तो मैंने कहा, फिर मेरे को सुनाने लगे ऐसे ऐसे विघ्न आ रहे हैं, समस्या आ रही। तो मैंने कहा रोजाना अमृत वेला उठ के करते हैं, मुरली क्लास करते हैं रोजाना। बोला आजकल जब से मैंने संकल्प किया है कि ड्रामा में जो होगा हो जाएगा, तो मैंने कहा ये तो कमजोर आत्मा की निशानी है, और फिर वैसा ही हो रहा है। देखो उसका अमृत वेला मिस हो रहा है, क्लास ही मिस हो रही है। तो मैंने कहा नहीं, आज से संकल्प करो कि नहीं, मुझे सफल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो मुझे ऐसा करना ही है, मुझे ऐसा बनना ही है। कोई न कोई लक्ष्य लेकर उसको सामने रखते हुए पुरुषार्थ करो। कभी भी परिस्थितियां देखो, एक जन्मों का हिसाब किताब हर एक के सामने आएंगी, हिसाब किताब चुकते होने के लिए, तो उन्हें देखकर हमने हार नहीं मान लेनी है, रुक नहीं जाना है। बाबा ने हमको वरदान दिया है बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म से अधिकार है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, तुमने अनेक बार माया को जीता है, फिर से जीतना है, विजयी बनना है। भगवान कह रहा है और हम कहेंगे नहीं, हम कहां हैं ऐसे है? तो कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा जो कह रहा है उसे 100% मन स्वीकार कर चले कि मुझे ऐसा बन के दिखाना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है, ये निश्चित है। इसलिए मैं बात के पीछे आपको एक एक अनुभव सुनाऊंगा, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। प्रैक्टिकल का अनुभव, वो काम करना सहज और सरल हो जाए, उस परिस्थिति को पार करना इजी हो जाए। तो पहली बात तो मैंने बताई कि अपनी संकल्प शक्ति को हम, वैसे संकल्प को जब हम एकाग्र कर देते हैं, पॉजिटिव पावरफुल शक्तिशाली बना देते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक वो शक्ति पावर आती जा रही है जाती है। और दूसरा, संकल्प को जब हम एकाग्र कर देते हैं, एक ही संकल्प का पूरी तरह से हम स्वरूप बन जाते हैं, तो जहां मन बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है, तो भी वहां आपकी स्थिति, आपका योग शक्तिशाली बन जाएगा। और उस स्थिति में आप जो भी संकल्प करेंगे उसमें सिद्ध होने की पावर आ जाती है। इसलिए हम जो मैंने पहले बताया, बनना करना चाहे उस संकल्प को बार बार रिवाइज करें, तो हमारे मन पर भी और हमारे शरीर पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ये नियम है कि जो भी हम संकल्प कर रहे हैं ना, वैसे हमारे बॉडी में सेल्स का निर्माण होता जाता है, और उस आधार से फिर उसका शरीर पर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो देखो एक शक्तिशाली संकल्प में कितनी बड़ी पावर है, जिसके द्वारा आप अपने शारीरिक कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के कर्म भोग में भी सहयोगी बन सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तबीयत भी कईयों के ऊपर नीचे होती रहती है ना, कुछ न कुछ छोटा मोटा कर्म भोग भी आता रहता है। तो कैसे स्वयं के और दूसरों के हिसाब किताब में आप कर्म भोग पर शक्तिशाली संकल्प के द्वारा विजयी बन सकते हैं। एक छोटा सा अनुभव मेरा स्वयं का ही। एक बार हमको गर्दन बहुत जबरदस्त दर्द हो गया, और इतना दर्द कि गर्दन थोड़ा भी इधर उधर करना मुश्किल। उस समय हम साउंड डिपार्टमेंट में सेवा करते थे, तो उस दिन नियमानुसार भट्टी थी, सुबह 9 बजे से भट्टी थी। तो क्लास पूरा हुआ, नाश्ता किया, फिर टाइम हो गया। तो मेरा लक्ष्य रहता है कि इस गाड़ी को बिना किसी दवाई गोली के ठीक रखा जाए, और कई बातों से, भोजन में, खाने पीने पे ध्यान देना, एक्सरसाइज, विचारों का पॉजिटिव पावरफुल बनाकर चलना। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम भी इतना नहीं है, तो कोई दवाई गोली के बजाय योग करते हैं, फिर देखेंगे जो भी। अभी टाइम हो गया योग भट्टी का, तो मैं आ गया है। और आधा घंटा योग करने के बाद विचार आया, क्यों ना इस शारीरिक कर्म भोग पर भी योग का प्रयोग करके देखा जाए, या संकल्प शक्ति का प्रयोग करके देखा जाए। तो ऐसे हमने प्रयोग किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशन लेकर इस गर्दन पर डाल रहा हूं, और इस गर्दन में जो भी दुख दर्द के वाइब्रेशन है वो खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा मैंने प्रयोग करना शुरू किया। तो जिससे समय ये मैं प्रयोग कर रहा था, तो ऐसा वास्तव में लग रहा था कि बाबा से जो पवित्रता सुख शांति के वाइब्रेशन लेकर इस गर्दन पर डाल रहा हूं, तो इन वाइब्रेशंस को पाकर इसमें जो दुख दर्द के वाइब्रेशन वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, निकलते जा रहे। ऐसा लगभग 2 घंटा योग चला, और 2 घंटा यही प्रयोग रहा हमारा। थोड़ा स्थिति कम ज्यादा हुई, लेकिन प्रयोग यही रहा। 2 घंटे के बाद हम अनुभव करते हैं कि हमारा दर्द बिना किसी दवाई को लेके कंप्लीट खत्म हो गया है। तो आप भी प्रयोग करके देखें, जिनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो तो। दूसरा, ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, अच्छा प्रसाद कर रहे हैं, लेकिन आपके कोई संबंधी, कोई साथ वाले, जो जिनकी स्थिति पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं है, उनके सामने कोई शारीरिक प्रॉब्लम आ गई है, तो आप चाहते हैं कि भाई इनको भी हम सहयोग करें। इस तरह से भी आप सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा एक अनुभव, एक माता का छोटा लड़का था, वो जन्म से ही थोड़ा मेंटली था, माइंड वीक होता है ना कईयों का, प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। तो उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि माताजी कुछ नहीं हो सकता, यह जीवन भर तक ऐसे ही रहेगा। तो माताजी बड़े परेशान थी। तो कुछ दिन के बाद माताजी ज्ञान में आ गई। ज्ञान में आने के बाद भाई बहनों से मिली, अपनी समस्या बताई, तो किसी ने हमारा क्लास में ऐसे अनुभवों का तो हमारा नंबर दे दिया। तो माताजी का फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, और मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा जीवन भर तक, लड़का ठीक नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं। तो हमने माताजी को बताया, माताजी आप एक प्रयोग करो, एक संकल्प शक्ति का, पावरफुल संकल्प का एक प्रयोग करो, या कहेंगे एक स्वमान का प्रयोग करो, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा और मैं विघ्न विनाशक आत्मा, इन दोनों स्वमानों का अभ्यास करते रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तो ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस बच्चे को जाए, और इससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ये संकल्प योग करते समय जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। और मैंने कहा बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। उस माता ने ऐसे करना शुरू किया बड़ी लगन से, क्योंकि उसका ये बच्चा था। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रही हूँ बच्चे को, और ये मेरे योग की शक्ति उस बच्चे को जाए, इससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए, ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो करती गई करती गई। तो जैसे जैसे वो योग करती गई, इस तरह से और वैसे वैसे उधर उस बच्चे की तुम्हें सुधार होता गया और 21 दिन के बाद वो बच्चा कंप्लीट ठीक हो गया। तो आप सोचिए, जहां आज की मेडिकल साइंस फेल है, वहां कैसे बाबा की शक्तियों में एक चमत्कार जैसा अनुभव होता है, एक पॉजिटिव पावरफुल विचारों में कितनी बड़ी एक जादू की शक्ति जैसे काम करती है। साधारण चीज नहीं है ये, है? हम रोजाना के योग करते हैं या बातें सुनते हैं तो हम जैसे सुनते सुनते कॉमन सी हो जाते हैं, लेकिन आज दुनिया में देखिए, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया और वो योग के प्रयोग से एक संभव हो जा कार्य, तो बड़ी चीज है ना बहुत। तो आप भी सुन के ऐसे अनुभव संकल्प आएगा, भाई कोई छोटी मोटी समस्या कईयों के सामने होती है, हम भी प्रयोग करें, जरूर प्रयोग करो। लेकिन इस प्रकार से संकल्प शक्ति के प्रयोग में सफलता पाने के लिए एक तो 5 बातों का होना बहुत जरूरी है। यदि आप संकल्प शक्ति के प्रयोगों में सफलता पाना चाहते हो तो 5 बातों को अपनी जीवन की धारणा में लाएं, फिर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, नहीं तो कभी सफलता असफलता दोनों मिल हो सकती है। पहली बात कि हमारा योग का चार्ट एक दिन का कम से कम 4 या 5 घंटे का अवश्य होना चाहिए, 4 या 5 घंटे का एक दिन का योग का चार्ट अवश्य होना चाहिए, 2 घंटा बैठ के और 2 घंटा कर्म करते हुए, तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना बहुत जरूरी है। एक ही स्थान पर एक ही समय रोजाना बैठ के योग करें, जितने भी दिन करना हो। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए जैसी परिस्थिति, जैसी समस्या, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर हम योग का प्रयोग करें। समझे बात, कि कहीं मान लो दुख दर्द की परिस्थिति है, तो मैंने जैसा कि अनुभव सुनाया, मैं मास्टर दुखर्ता सुखकर्ता आत्मा हूं, इस स्वमान का अभ्यास करें। कहीं कोई अशांति से संबंधित समस्या है, तो मैं शांति का अवतार हूं। कहीं कोई अपवित्रता संबंधित समस्या है, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता का अवतार हूं। माना जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में इस, हाँ जी, हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जहां पर कोई स्वमान आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे बेटर है मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान, सबसे ऊंचा श्रेष्ठ, वो प्रयोग कर सकते। चौथी बात, हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात, पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति का होना जरूरी है। इन 5 बातों को सामने रखते हुए आप फिर योग का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति, 5वीं बात। तो जिनके भी सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो करके देख सकते हैं योग प्रयोग। और संकल्प शक्ति के प्रयोगों में अगली बात, हमारे संकल्पों का, संकल्पों में हम व्यर्थ से कंप्लीट मुक्त बने, क्योंकि जहां व्यर्थ है ना, तो वहां आत्मा की बहुत सारी शक्तियां और समय वेस्ट चला जाता है, स्थिति साधारण हो जाती है। तो व्यर्थ क्यों चलता है, जहां हम अपने मन को खाली छोड़ देते, मन को कोई काम नहीं देते। तो हमेशा रोजाना अमृत वेले उठते आज मुझे इस स्वमान में या इस लक्ष्य को पाने के लिए ये अभ्यास या मनन चिंतन स्टडी करके चलना है। एक सारे दिन का मन को लक्ष्य दे दो, आज इस स्वमान या अभ्यास करते या मनन चिंतन करते रहना, तो आप सहजी व्यर्थ के विचारों से मुक्त होते चले जाएंगे। क्योंकि मन का तो काम है जो देखा जो सुना उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाता है। अगर आप उनको एक पॉजिटिव पावरफुल लक्ष्य देकर चलेंगे तो फिर वैसा चिंतन चलेगा, वैसे आपके विचार बनते, समर्थ विचार बनते जाएंगे। और अगर कोई लक्ष्य नहीं दिया तो जो देखा जो सुना उसका ही चिंतन चलना शुरू होगा। तो इसलिए आवश्यकता है सदा ही अपने मन को समर्थ शक्तिशाली विचारों का लक्ष्य देकर उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर अभ्यास करते हुए चलते रहना। बाबा के शब्द हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। ये बाबा के शब्द हैं। तो जहां हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं वहां कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, उनका फोन आया, कहने लगे भाई जी मेरे को एक मेडिकल का बड़ा एग्जाम देना है और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो मेरे मन में थोड़ा सा हलचल बढ़ती जा रही है, पता नहीं कैसा होगा पेपर, क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, तो मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करेंगे क्या करना चाहिए। तो हमने उसको बताया आप एक प्रयोग करो, पहली बात कि ये इस निश्चय के जब पेपर देने जाए तो इस निश्चय के साथ पेपर देने जाना, या इसके पहले आप ये संकल्प कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा है या मैंने जो याद किया है वैसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे, इस निश्चय के साथ पेपर देने जाए। दूसरा, जब पेपर देने जाएं घर से निकलें तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, इस निश्चय के साथ जाना। तीसरा, जब पेपर हाथ में आए और पेपर देना शुरू करें उसके पहले एक मिनट ही बाबा को दिल से याद करके आना, बाबा अभी आप आओ और मेरे से ये पेपर करवाओ, बाबा का आह्वान कर लेना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। ऐसा हमने उसको बताया और उसने ऐसा किया और उसका पेपर अच्छा ही हुआ। और डेढ़ या दो महीने के बाद जब रिजल्ट आया, पहले भी उसने बताया कि पेपर अच्छा हो गया है मेरा और रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं जैसे आपने बताया मैंने वैसे ही इसी निश्चय के साथ पेपर देने गया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया है। और रिजल्ट जब आया तो डेढ़ या दो महीने के बाद उसका फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन का नंबर आए उसके। तो हम क्या सोच रहे हैं उन सभी का हमारे मन और शरीर पर या काम पर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए संकल्प शक्ति को हर बात में पॉजिटिव पावरफुल शक्तिशाली बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए ये आज से निश्चय कर लो हर कार्य में कहीं भी कमजोर नेगेटिव संकल्प को आने नहीं देना है, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल आए भी तुरंत अपने आप को चेंज कर लो, नहीं ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम पॉजिटिव संकल्प करना। तो इसलिए जहां संकल्प शक्ति पॉजिटिव पावरफुल है समर्थ है तो निश्चित रूप से वहां वैसा ही होगा। और संकल्प शक्ति को यदि हम हमारे संकल्पों में यदि शुभ भावनाएं हैं, शुभ भावना युक्त संकल्प है, क्या शुभ भावना युक्त संकल्प, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सुखी रहे, सबको अनेक कार्यों में सफलता मिले है। अब ऐसे विचारों में कोई पैसा तो खर्च नहीं होता ना मेहनत लगती है, सिर्फ संकल्प ही करना है ना है? ऐसी जहां हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रहेगी, तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में भी वो शक्ति है कि आपको दूसरों से फिर वैसा ही उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा और एक नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ये नियम है कि जैसी भावना हम अपने मन में दूसरों के प्रति रख के चलते हैं, उनके वैसे वाइब्रेशंस उन आत्माओं तक पहुंचते हैं। जिस भी आत्मा के लिए हम भावना रख रहे हैं उस आत्मा तक वैसे वाइब्रेशन पहुंचते हैं और उसको पाकर वो आत्मा भी हमारे लिए वैसी ही भावना रख के चलेगी जैसा कि हम उसके प्रति रख के चल रहे हैं। तो शुभ भावना यदि रख के चलते हैं तो वो भी शुभ भावना हमारे साथ हमारे प्रति रखेगी अपने मन में, और उनकी शुभ भावना हमारी स्थिति को पुरुषार्थ को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगी, सहयोगी बन जाएंगी। और यदि हम नेगेटिव भावना रख के चलते हैं किसी के भी लिए अपने मन में, तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वो आत्मा भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी, तो उसकी नेगेटिव भावनाएं हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेंगे। इसलिए ध्यान देने की बात है कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या विघन परिस्थिति आ रही हो तो तुरंत चेक करो अपने मन की भावनाओं को कि मेरे मन में किसी के भी लिए कोई नेगेटिव भावना तो नहीं है, हा? तो चेक कर चेंज करें अपने आप को। तो वहां पर अपने मन की सब भावनाओं को सर्व के प्रति कल्याणकारी बनाकर चले, क्या कि सभी आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबको शांति मिले, शक्ति मिले। इस तरह से हम जहां अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगे। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक बार की बात है, हमको दिल्ली जा रहे थे तो उसे हमारे साथ वाले भाई ने भी प्रोग्राम बना लिया कहीं और दूसरी जगह जाने का। अभी मधुबन में एक ही डिपार्टमेंट से एक साथ दो भाई बाहर जाएं तो थोड़ा सा यहाँ की सेवा में कमी आती है। तो मैंने उसको समझाया, भाई आप मेरे को पहले बताते तो मैं अपना प्रोग्राम आगे पीछे कर लेता, अभी मेरा प्रोग्राम फाइनल हो गया और आप भी बता रहे हैं कि अभी इसी डेट में जाना है तो हो सके तो मैंने कहा आप थोड़ा आगे पीछे कर लो अपना प्रोग्राम, पीछे जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं मेरे को अभी जाना है, कुछ भी करो किसी को रखो मेरे को जाना है। काफी समझाया लेकिन वो भाई नहीं माना। जब नहीं माना तो मैंने फिर ये कहकर छोड़ दिया, अच्छा मैंने कहा ठीक है आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। उसके बाद मैंने अमृत वेले उस भाई को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज किया और सूक्ष्म में इमर्ज कर उससे इस तरह से शुभ भावनाओं के रूप में बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और देखो मिनका मेरे मन में आपके प्रति बहुत शुभ भावना है कि आप जरूर जाओ जहां भी जाना है लेकिन मेरे आने के बाद जाओ ताकि यहां बाबा की सेवा भी ठीक चलती रहे, दोनों का काम भी हो जाए। ऐसे मैंने अमृत के लिए सूक्ष्म में इमर्ज कर उससे बातें की, प्रयोग करना 7 दिन लेकिन 2 दिन ही किया। तीसरे दिन ड्रम अनुसार योग की भट्टी थी यहां, अब योग की भट्टी में तो मैंने फिर ये प्रयोग किया। योग की भट्टी में भी तो अमृत वेले फिर उस आत्मा को इमर्ज कर इसी प्रकार के वाइब्रेशन दिए और उससे इसी प्रकार से बातें की। तो ऐसे 2 दिन प्रयोग करने के बाद और तीसरे दिन जब उससे मैं मिलता हूं तो मैंने पूछा उससे, भाई आप दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन आपके वापसी आने की डेट कौन सी है? तो कहता है, नहीं दिल्ली कहीं और जगह की जाने की बात थी, तो कहता है कि मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो क्या हुआ, शुभ भावना शुभ कामनाओं के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया, लेकिन शुभ भावनाओं के प्रयोग में, इस तरह के प्रयोग में सफलता पाने के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहले उन दो बातों को अपने अंदर जीवन की धारणा में लाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्या? एक तो ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है, क्यों करना है वो मैं बताऊंगा। दूसरा कि जिस भी आत्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं आप, उसके लिए अपने मन में कंप्लीट शुभ भावना होनी चाहिए, जरा भी नेगेटिव भावना ना हो। आप प्रयोग तो कर रहे हैं, यदि भावना थोड़ा भी नेगेटिव है तो वो प्रयोग में सफलता नहीं हो पाएगी, आपको मिल पाएगी। और अमृत वेले क्यों करना है, क्योंकि अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है। तो जिस आत्मा को भी हम जो भी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देते हैं वो उस तक पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ साथ उसका अंतर मन शांत और खाली है तो उन विचारों को सहज स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात किसी ने स्वीकार कर ली तो फिर वो आत्मा वैसे करेगी। ये है इसका विधि सिद्धांत तरीका, इसलिए ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। तो इन दोनों बातों को सामने रखते हुए आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जहां शुभ भावना हमारे मन में निरंतर सभी के प्रति रहती है, तो देखो वहां पर कैसी भी आत्मा हो, आपको हर आत्मा से सहयोग ही मिलेगा। आजकल कई ऐसे नेगेटिव या वृत्ति वाली या इविल सोल्स की वाली आत्माएं जो होती हैं, तो बहुत नाम सुन के डरते हैं, लेकिन मैं तो आपको बताया जैसे कि इविल सोल क्या कैसी भी सोल हो, यदि आपके मन में सर्व के प्रति शुभ भावना है तो आपको हर आत्मा से सहयोग ही मिलेगा, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इस पर भी एक छोटा सा अनुभव। एक डॉक्टर थे, अज्ञानी, बीके की बात नहीं, अज्ञान काल में भी तो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना भाई, बहुत रहम दिल दयालु स्नेही सहयोगी सबके प्रति शुभ भावना रख के चलने वाले हैं। तो डॉक्टर बहुत ही रहम दिल दयालु था, स्नेही सहयोगी, उसके प्रति शुभ भावना कल्याण की भावना उसके मन में रहती थी। तो कोई गरीब पेशेंट आते थे तो फ्री में भी दवाई दे देता था उनको, और किसी को बहुत गरीब होते थे पैसे की जरूरत होती तो पैसे से भी सहयोग कर देता था। तो वो बहुत ही फेमस हो गया, सुबह से शाम तक उसकी क्लिनिक पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी पेशेंट की। तो ऐसे चलता रहा तो उसने सोचा ये तो जीवन भर का धंधा है, चलो कुछ दिन के लिए, दो चार दिन के लिए क्लिनिक बंद करके कहीं हम घूम फिर के आते हैं। थोड़ा करते करते एक काम, व्यक्ति कई बार थोड़ा सा बोरिंग फील हो जाती है ना, थकावट सी या बोरिंग होने लगती है, तो सोचता है चलो भाई थोड़ा सा कहीं चेंज के लिए रिफ्रेश होके आते हैं। तो पहले से ही बोर्ड लगा दिया उन्होंने, फलाने से फलानी डेट को क्लिनिक बंद रहेगी, तीन या चार दिन जो भी था। और गाड़ी निकाली और दोनों पति पत्नी बैठकर जा रहे थे। तो चलते चलते और उनको रात हो गई, तो रात में एक सुनसान जंगल से, और वो पास कर रहे थे, तो सुनसान जंगल में जब पास कर रहे थे तो अंधेरी रात्रि में, और जंगल के बीच में आकर मेन रोड पर, जंगल रोड था और रोड के बीचों बीच एक सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा ऐसे ऊपर को हाथ करके खड़ा हुआ है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस अंधेरी रात्रि में सुनसान जंगल के अंदर ये सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति यहाँ बीच रोड पर खड़ा है। अब बीच रोड पर खड़ा, सिंगल रोड था तो उसको गाड़ी रोकनी पड़ी। वो गाड़ी थोड़ी आगे उसके रोक के वो निकल के उसके पास आए, पूछे उसके पहले ही वो बुड्ढा उसके पास जाकर रोने लगा और कहने लगा आप फलाने डॉक्टर हो, आप बहुत रहम दिल हो, दयालु हो, लोगों के सही सहयोगी हो, और मेरी पत्नी बहुत सीरियस है और वो शरीर छोड़ने वाली है, और कैसे भी करके आप उसको बचा लो नहीं तो वो मर जाएगी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, कभी इस व्यक्ति को मैंने देखा भी नहीं और इसने मेरा परिचय भी दे दिया और अपनी बात भी बता दी। चलो भाई, एक डॉक्टर होने के नाते उसका फर्ज बनता है कोई ऐसी सीरियस हालत में कोई व्यक्ति है सब काम छोड़ के पहले वो उस पेशेंट को देखता है। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी हालत है सीरियस है तो आप ऐसा करो, आप हमारी गाड़ी में बैठो और किधर है आपका घर रास्ता बताओ, हम चल के देख लेते हैं। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और थोड़ा सा पक्के रोड पर चले 1 किलोमीटर के करीब, और फिर एक कच्चा रास्ता आया, उससे 2 किलोमीटर चलकर और उनको एक गांव आया। गांव में एक टूटी सी झोपड़ी में उसकी बुढ़िया चारपाई पर लेटी हुई थी। तो डॉक्टर ने चेक किया, चेक कर बताया, बोला ऐसी कोई सीरियस वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा बुखार है और मैं एक इंजेक्शन लगाता हूँ और एक दवाई मेरे पास है नहीं, मैं लिख के दे देता हूँ, आप दिन में कल ले आना और हम कल शाम को आके फिर देख लेंगे, एक दवाई मैं अभी दे देता हूँ। तो उसने उस बुढ़िया को इंजेक्शन लगाया। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आप में से बहुतों को अनुभव होगा, जैसे वो सुई अंदर डालता है इंजेक्शन की तो थोड़ा सा व्यक्ति थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है, हिलता है व्यक्ति मामूली, लेकिन उसने जैसे ही उस बुढ़िया को इंजेक्शन लगाया तो वो जरा भी टस से मस्तक नहीं हुई, जरा भी हिली नहीं। तो सोचने लगा ये पेशेंट है या मुर्दा है, कोई पेशेंट होगा तो थोड़ा मूवमेंट जरूर होती है और जरा भी नहीं हिला तो पता नहीं मुर्दा है या पेशेंट है। ऐसे सोचकर चलो भाई जो भी हो मैंने लगाना है, तो लगा दिया उसने इंजेक्शन, लगा दिया इंजेक्शन और एक दवाई को दे दी कि आप ले लीजिए ठीक हो जाएगी, बोल कोई ऐसी ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। तो दवाई देने के थोड़ा समय बाद और वो बुढ़िया उठकर बैठ गई, बैठ गई तो उसके चेहरे से लगा को ठीक देखने में आ रही है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई हम अभी चलते हैं, हमको और कहीं दूर जाना है, तो मैं कल आकर फिर देख लूंगा आप, और ये दवाई मैंने जो लिख के दी है वो कल ले आना आप। तो बोल ठीक है। तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं नहीं, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, और हमारे घर में बहुत दिनों के बाद बहू आई है तो हम इसको कुछ न कुछ सौगात देकर भेजेंगे, डॉक्टर की युगल के लिए बोला। तो डॉक्टर बोलने लगा कि माताजी आप टूटी सी झोपड़ी में रह रहे, इतना गरीब है, कोई बात नहीं है, आप जो भी है आपका अपने पास रखिए, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और आपके काम आएगा, आप रखिए। बोल नहीं नहीं हम बोल बिना गिफ्ट दिए नहीं जाने देंगे। वो ज्यादा जिद करने लगी तो बोल ठीक है जो देना हो भाई दे दो। तो उस बुढ़िया ने एक सोने की गिन्नी निकालकर डॉक्टर की युगल के हाथ में रख दी। वो बड़ा आश्चर्य करने लगे, देखने के सोने की गिन्नी, ये टूटी सी झोपड़ी में रहने वाले इतने गरीब और हमको सोने की गिन्नी गिफ्ट में दे रहे। चलो ठीक है, माना गिफ्ट वो लेकर और चल पड़े जहां उनको जाना था डॉक्टर को और उसकी युगल को, वहां पहुंचे और रहे, घूमे फिरे। जो करना था कि यार जब दूसरे दिन शाम होने को आई तो उनको याद आया कि हम बोल के आए हैं, चल के देख लेते हैं। तो फिर गाड़ी में बैठे फिर उस गांव में पहुंच गए। तो पहले दिन तो आए थे वो रात को, तो किसी ने देखा नहीं उनको, और दूसरे दिन आए वो दिन में शाम को, तो गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, आइए डॉक्टर साहब आइए, आजकल बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, कैसे आना हुआ, क्या हुआ, सारा पूछने लगे समाचार। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके गांव में जो टूटी सी झोंपड़ी में कोने पर बुढ़ा बुढ़ी रहते है ना, उसकी युगल बहुत सीरियस थी, तो बीमार थी, तो मैं कल रात को आया था तो मैंने एक इंजेक्शन लगाया उसको और एक दवाई दी, और एक दवाई मेरे पास नहीं थी तो मैं उनको लिखकर देखकर आया हूँ। तो उनको मैंने बोला भाई कल दिन में आप ले आना, कल शाम को आकर हम फिर देख लेंगे, तो वो ले आए होंगे वो दवाई, तो मैं उनको देखने के लिए आए। किसकी बात कर रहे हैं आप? बोला आपके गाँव में यहाँ टूटी सी झोंपड़ी पे कोने पे जो बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं। बोल जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो आज से 4 साल पहले दोनों ही शरीर छोड़कर चले गए। बोल नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अब जिसने देखा है वो तो बताएगा हैं? बोल चलो मैं चल के बताता हूँ। अब डॉक्टर बोलने लगा तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसके साथ चल पड़े। बोल देखते हैं 4 साल के बाद कहां से जिंदा हो गए हैं। तो सब उसके साथ चल पड़े, गए तो वहां कोई नहीं था, चारपाई खाली थी और डॉक्टर ने बताया कि देखो मैं आया था और मेरे हाथ की लिखी हुई दवाई की पर्ची चारपाई के ऊपर पड़ी थी, देखो ये पर्ची मेरी दवाई के हाथ की लिखी हुई है। और दूसरा, मैंने उस बुढ़िया को इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन टूटी हुई शीशी वो चारपाई के नीचे पड़ी थी, देखो मैंने इंजेक्शन लगाया शीशी चारपाई के नीचे पड़ी है। और तीसरा, देखो हमारे को उन्होंने सोने की गिन्नी ये गिफ्ट में दी है तो ये गिन्नी हमारे पास है। अब डॉक्टर अपनी जगह सही और गांव वाले अपनी जगह सही तो आखिर ये हुआ क्या? अब जिसने देखा है वो तो कहेगा। तो जब वो बुढ़ा बुढ़ी जीवित थे, जिंदा थे, तो उसकी युगल बहुत बीमार रहती थी, तो उसका जो पति है वो बहुत डॉक्टरों के पास गया, भाई घर चलो बस मेरी युगल सीरियस है उसको देखो। तो सब डॉक्टर उसको दवाई गोली दे देते थे, पूछ के भाई क्या बीमारी वैसी दवाई दे देते, लेकिन कोई उसके घर पे नहीं आया। तो उसकी पत्नी बीमार रहते रहते और उसने शरीर छोड़ दिया। तो उसके मन में संकल्प रह गया कि मेरा पति जिंदा होते हुए मेरा इलाज नहीं करा पाया। तो जो बाबा कहते हैं ना अंत मते सोगति, तो उस संकल्प को लेकर वो आत्मा भटक रही थी। और उसकी युगल जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, उसके पति ने भी सोचा कि देखो मैं जिंदा होते हुए अपनी इलाज का अपनी युगल का इलाज नहीं करा पाया और उसने शरीर छोड़ दिया, तो फिर मेरा जीवित रहना बेकार है। तो उसके वियोग में फिर थोड़े दिन बाद उसके पति ने छोड़ दिया। तो वो दोनों आत्माएं सूक्ष्म शरीर को धारण कर भटक रही थी। तो ऐसी आत्माओं की जो शक्ति है आम आदमी से दुगनी तिगनी हो जाती है। कौन व्यक्ति कैसा है, कहाँ है, वो एक दूसरे से स्थान पर जाना या व्यक्ति को पहचानना जानना उनके लिए बहुत सहज बात होती है। तो वो दोनों आत्माएं इस संकल्प को लेकर भटक रही थी कि मैं अपनी युगल का इलाज नहीं कर पाया जिंदा होते हुए, तो उनके मन में संकल्प था। तो उसने देखा कि ये जो डॉक्टर आ रहा है ना गाड़ी में बैठे हुए, ये बहुत रहम दिल है, दयालु है, लोगों का सनेही सहयोगी है, ये हमारी बात मानेगा। तो उसको उन्होंने रास्ते चलते गाड़ी रास्ते में खड़े होकर उसकी गाड़ी रुकवाई और उससे सारी अपनी बात बताई कि मेरी युगल बहुत बीमार है, शरीर छोड़ने वाली है, कैसे भी उसको बचा लो नहीं तो मर जाएगी। और उसको डॉक्टर ने अपनी गाड़ी में बिठाया और उस डॉक्टर को अपने घर तक लेकर आया और उसने डॉक्टर ने उसकी पत्नी का इलाज किया और उनका संकल्प पूरा हो गया और वो इस बंधन से मुक्त हो गए। ये प्रैक्टिकल का अनुभव है। तो क्यों सुनाया मैंने कि आज कई बार कई भाई बहने इविल सोल्स का नाम या ऐसी आत्माओं का नाम सुन के डरते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वो भी आ रहे हैं ना, लेकिन उनको स्थूल शरीर नहीं है लेकिन आत्मा तो वो भी हैं। तो हम सिर्फ अपने मन में जहाँ पर सर्व के प्रति यदि शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रख कर चलते हैं, तो वहाँ इविल सोल क्या कैसी भी सोल हो, आपको हर आत्मा से सहयोग ही मिलेगा, अच्छा व्यवहार ही मिलेगा, कोई नेगेटिव गलत व्यवहार नहीं होगा आपके साथ। तो इसलिए सदा हम अपने मन में सर्व के प्रति, चाहे कोई कैसा व्यवहार हमारे से करे, नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर कोई नेगेटिव व्यवहार करता है हमारे प्रति तो हमारे मन की भावनाएं बदल जाती हैं ज्यादातर लोगों के प्रति। और बदल गई भावनाएं तो क्या होगा, उस आत्मा के पास भी ऐसी भावनाएं पहुंचेंगी और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रखेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न डालेंगे और रुकावट डालेंगे, तो जो हम बनना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देकर चलने की आवश्यकता है कि जैसे हमको बाप समान बनना है, तो बाबा के मन में देखो, चाहे कोई कैसा बाबा का बच्चा है, कोई श्रीमत का पालन करता है नहीं करता है, आज्ञा मानता है नहीं मानता है, मुरली सुनता है, अमृत वेले उठता है नहीं उठता है, लेकिन फिर भी बाबा के मन में किसी के प्रति जरा भी नेगेटिव भावना नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इनको ही देव बनना है, इनको ही संपूर्ण बनना है, तो कितनी शुभ भावना, कितनी श्रेष्ठ भावना रहती है हमारे मन में, हमारे प्रति बाबा के मन में है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, तो हमारे मन में भी निरंतर हमें भी सभी के प्रति कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी है। तो क्या होगा, हमको भी फिर दूसरों से निरंतर सहयोग मिलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और संकल्प शक्ति के प्रयोग के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई स्वमान इमर्ज कर ले, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूं, माया जीत आत्मा हूं, इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। सारे दिन में मन को काम दे दें, उसी स्वमान का अभ्यास करें, उसी नशे में रहें। तो बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों में बहुत बड़ी शक्तियां हैं। स्वमान अर्थात क्या, स्वयं ही स्वयं को मान देना। भगवान जिस नजर से हमें देखते हैं वैसा अपने आप को समझकर चलना, ये भी तो एक संकल्प ही है ना। बाबा ने उसको रायल शब्द में कहा, स्वमान मना श्रेष्ठ पॉजिटिव शक्तिशाली विचार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये भी तो एक संकल्प ही है ना, लेकिन स्वमान का संकल्प। तो स्वमान से स्वयं को मान मिलता है, दूसरों से भी मान मिलता है और बाबा से भी मान मिलता है, सम्मान मिलता है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा आप कैसी भी नेगेटिव वृत्ति वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा आया जा सकता है। इतनी बड़ी शक्तियां स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन की। तो बाबा द्वारा दिए हुए स्वमानों का जब हम स्वरूप बनकर चलते हैं तो हमारे द्वारा वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, वैसा वातावरण वायुमंडल बनता है और लोगों को वैसी अनुभूति होती है। और अनेक कार्यों में हम उस आधार से सहज सफलता की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरों की स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा दूसरों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ये बड़ी शक्तियां बाबा, मैंने बताया ना, जैसे स्वमान का हम अभ्यास कर रहे हैं तो अगर पूरी तरह से हम उसका स्वरूप बन जाते हैं तो फिर लोगों को वैसी अनुभूति होगी या वो जो चाहते हैं वैसी अनुभूति होगी। एक छोटा सा अनुभव, कहीं हम एक जगह भट्ठी कराने गए तो वहां पहली बार गए थे तो बहन जी ने बोला कि आपको अमृत वेले संदली बैठ के योग कराना है, ठीक है जी। तो इसी स्वमान का अभ्यास करते मैं योग करा रहा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर सभी आत्माओं को दे रहा हूं। 5-6 लोग ही थे तो ऐसे योग कर रहे थे, अच्छे पावरफुल स्थिति थी। और मैंने कहा बाबा अभी आप आओ और इन आत्माओं के लिए जो भी आपको अनुभूति करानी हो कराओ, ऐसा बाबा से वाइब्रेशन लेके मैं दे रहा था। उधर वो टीचर बहन जो थी सेंटर की, उसके मन में योग करते करते ऐसा संकल्प आया कि बाबा देखो हमने आपको साकार में तो नहीं देखा लेकिन आपने अपने घर से अपने एक लाल को भेजा है तो हमारे लिए तो वही बाप समान है। तो ऐसे उसके मन में योग करते करते संकल्प आया। उसके एक मिनट बाद ही मेरी जगह उसको ब्रह्मा बाबा नजर आता है। वो देखने लगे तो छोटेलाल भाई योग करा रहा था। फिर उस स्थिति से नीचे आकर फिर देखती है तो मैं योग करा रहा हूँ ये देखने को मिलता है। फिर एक दो मिनट के बाद फिर वो वापस उस स्थिति में स्थित होती है तो फिर देखती है फिर ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा। तो ये सब कराता तो बाबा है, हम तो सिर्फ निमित्त बन के बैठते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी पावरफुल संकल्प का, किसी भी समान का यदि पूरी तरह स्वरूप बन जाते हैं तो किस आत्मा की क्या इच्छा है, क्या संकल्प है, उसको वो अनुभूति बाबा करा देता है, उसकी वो पूरी करा देता है। इधर हमारी भी यदि स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो ही उसके द्वारा ही बाबा वो अनुभूति कराता है। साधारण स्थिति से काम नहीं चलेगा। इसलिए इस प्रकार से हम किसी भी समान का यदि स्वरूप बन के चलते हैं तो लोगों को वैसी अनुभूतियां होने लगती हैं। कैसे? समान के पावरफुल वाइब्रेशन से दूसरों की समस्याओं का भी सब समाधान कर सकते हैं, योग के पावरफुल वाइब्रेशन से। ऐसा भी एक अनुभव, एक जगह हम नहीं एक बार अहमदाबाद से वापस आ रहे थे, सुबह गए शाम को वापस आ रहे थे, कुछ काम से गए थे। तो अब शाम को हम रोजाना जैसे अमृत वेले योग करते हैं, एक घंटा तो हमको हमारा लक्ष्य रहता है, एक घंटा योग करना है बैठकर। कभी थोड़ा सा कुछ बिजी हो गए, कहीं आना जाना हुआ तो फिर चलो आधा घंटा तो कम से कम डेली जरूर करना है, नहीं तो लक्ष्य एक घंटे का रहता है। तो उस दिन वो समय श्याम का समय हमारा यात्रा में था, वापस आ रहे थे अहमदाबाद। तो भाई मैंने कहा अभी आज तो बैठ के तो योग नहीं हो पाएगा, तो चलो मैंने कहा बैठ के नहीं तो गाड़ी में बैठे बैठे योग कर लेते हैं, हाँ कम से कम मिस तो नहीं होगा ना। तो इसी सुमान को लेकर योग कर रहे थे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को या सारे विश्व की आत्मा को दान दे रहा हूं, ऐसे योग अभ्यास कर रहे थे। अच्छी स्थिति थी। उसी समय देखो कैसे ये हमको कम पता चलता है, लेकिन बाबा हमारे योग के द्वारा अनेक आत्माओं की समस्याओं को कैसे समाधान कराता है। कहीं किसी को संदेश देना हो, किसी को टचिंग करनी हो, किसी को समाधान करना है, किसी को कुछ और सेवा करनी है, वो बाबा करवाता है। लेकिन कब? जब हमारी स्थिति पावरफुल शक्तिशाली होगी योग में। तो इस समय मैं शाम को बैठा बैठा योग कर रहा हूँ गाड़ी में, और कहीं कोई एक कुमार भाई थे, उनके सामने कोई बड़ी समस्या आ गई थी और वो अपने वहां सेंटर पर बाबा के कमरे में बैठ के बाबा को दिल से याद कर रोक रोक के कह रहा था, बाबा कैसे करके मुझे आज इस समस्या का समाधान चाहिए। और वही बार बार उसके मन में संकल्प आ रहे, बहुत टेंशन हो गया था, योग नहीं लग रहा बाबा से। तो ऐसे उसने 10-15 मिनट बाबा को दिल से याद कर कहा, रोया भी। और बस 15 मिनट के बाद बाबा हमारा फोटो उसके सामने इमर्ज कर देता है, नीचे नाम भी लिखा जाता है और बाबा कहता है, बच्चे आप इस आत्मा से बात करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो हमारे को जानता था। तो बस 3 मिनट के बाद ही उसका फोन आ जाता है हमारे पास, भाई जी मेरे सामने से ऐसी बड़ी समस्या आ गई, मैं आपसे इसका समाधान चाहता हूँ, कोई विधि बताओ। तो मैंने बताया, देखो अभी मैं यात्रा में हूँ, कहीं सिग्नल मिलता है कहीं नहीं मिलता टावर तो कट जाएगा फोन। तो मैंने कहा आप 9 बजे रात को करना, तब आराम से बात करेंगे हम, तब तक मैंने कहा ये 2-3 अभ्यास उसको बता दिए, एक कर लीजिए आप। बोल ठीक है। रात को 9 बजे उसने कहा, फिर फोन आया, फिर सारी बात बताई उसने और हमने उसको 3-4 प्रकार की बातें बताई, अपने योग के चार्ट को। मैंने कहा कम से कम 4 घंटे का बनाओ और उसके लिए पहले ये 3 अभ्यास बताए, 50 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास, 50 बार शरीरी बनने की प्रैक्टिस सारे दिन में, और स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखो और सर्व के प्रति शुभ भावना रख के चलो, और रोजाना इनका एक अव्यक्त मुरली पढ़ो और एकांत बैठ के अपने आप से बातें करो। और भी कुछ कई बातें बताई और सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि भाई जी मेरी समस्या का समाधान हो गया है और मैंने क्यों आपको फोन किया। तब उसने एंड लास्ट में ये बात बताई कि मैं जब बाबा को ये समस्या सुना रहा था तो बाबा ने आपका फोटो मेरे सामने मर्ज कर दिया, नीचे नाम भी लिखा गया और बाबा ने कहा कि देखो आप इस आत्मा से बात करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो इस तरह से कराने वाला तो सब कुछ बाबा ही है, लेकिन हम उस योग बने अपने आप को, ऐसी हमारी स्थिति, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होगा तो उसके द्वारा बाबाएं उसे यूज कर और अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही कराता रहेगा। और जहां हम किसी भी समान का स्वरूप बनकर चलते हैं तो आत्माएं तो क्या, आत्माएं तो परिवर्तन हो ही जाती हैं, लेकिन प्रकृति और उसके पांच तत्व भी उससे परिवर्तन होते हैं, वो भी पावन बन जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है योग बल के अंदर। अगर आपने पांच तत्वों को पावन बनाने की सेवा की है तो वो कभी भी आपके रास्ते में विघ्न रूप नहीं बन सकते, सदा ही आपको सहयोग मिलेगा उनसे। एक जगह कहीं हम भट्टी कराने गए तो मैंने वो बहन जी, यहां से निकलने से पहले पांच दिन पहले वो बहन जी को फोन किया। मैंने कहा बहन जी मैं आ रहा हूं फलानी डेट को और वहां मैंने कहा मौसम कैसा है, तो बहन जी कहती है भाई यहां तो बहुत गर्मी है। तो मैंने बाबा को इस योग में सुमान का अभ्यास करते प्रकृति को योग का दान दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूँ कि हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब मैं उस जगह पर जाऊं, क्योंकि हमें भगवान की सेवा करने वहां जाना है, तो थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे मैंने 3 मिनट जैसे की वाइब्रेशन दिए बाबा से लेकर प्रकृति को बात की जैसे, और 5 दिन के बाद जिस दिन हमको यहाँ से निकलना था उस दिन मैंने फिर फोन किया बहन जी को। मैंने कहा बहन जी मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, और तो बहन जी बोलने लगती है भाई आप आ तो रहे हो लेकिन यहाँ तो 5 दिन से रोजाना बरसात हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर तो गर्मी कम हो ही गई। फिर मैंने संकल्प किया योग में कि बाबा मैं जब वहां जाऊं तो बरसात भी बंद हो जानी चाहिए, बरसात हो भले लेकिन जिस स्थान पर हम जाएं उस स्थान पर उस समय बरसात ना हो, आगे पीछे भले हो, मुझे कोई हर्ज नहीं उससे है। तो बस यहां से हम पहुंचे दूसरे दिन सुबह 7 बजे, तो उस समय वहां बस हल्की हल्की फुहार सी पड़ रही थी ट्रेन से जैसे हम उतरे, और बस हम गाड़ी में बैठे सेंटर पर गए और बस तैयार हुए और क्लास कराया, नाश्ता करके जैसे ही दूसरे सेंटर पर निकले धूप खिल गई, और एक ही दिन पहले दिन में 5 क्लास, दूसरे दिन 6 क्लास, नजदीक नजदीक शहर में थे सेंटर, और बहुत अच्छी सेवा हुई। और आगे का प्रोग्राम फिर जहां भी हमको जाना था 2-3 घंटे दूरी पर या कोई 1 घंटे की दूरी पर किसी सेंटर पर क्लास कराने, तो हम यही अनुभव कर रहे हैं हमारे साथ जो भाई बहने थे, बोल हम जहां जाते हो आगे बढ़ जाती है, बाद में होती है, हम जहां जाते बरसात बंद हो जाती है। एक जगह 11 बजे हमारा क्लास रखा था 3 घंटे की दूरी पर वहां से बड़े सेंटर से, तो वहां सुबह 6 बजे से ही बहुत मूसलाधार कंटिन्यू बरसात, और 10 बजे तक बरसात चल रही है। तो सब भाई बहन वहां सोचने लगे कि 11 बजे क्लास रखा, 10 बजे तक तो बरसात हो रही है तो कौन क्लास में आएगा है? और जैसे ही 10 बजे बरसात बंद और 10:30 बजे धूप खिल गई और 11 बजे सारे क्लास में आ गए, क्लास रूम फुल। तो यदि हमने योग में 5 तत्वों को पावन बनाने की सेवा की है तो यही अनुभव देखने को मिलता है। तो बहुत जगह के अनुभव है हमारे कि वो प्रकृति और उसके 5 तत्व कभी भी हमारे रास्ते में विघ्न रूप नहीं बन सकते, सदा सहयोगी बनकर बाबा की सेवा में आपको सहयोगी मिलेगा। इसलिए 5 तत्वों को भी योग युक्त होकर पावन बनाने की सेवा करें 5-10 मिनट योग में। एक बार एक मुरलीम बाबा ने कहा 5 तत्व देवताई रूप धारण करके बाबा के पास आए, बाबा के सामने आए, बाबा आप हमें छुट्टी दो हम अपना काम शुरू करें, तो बाबा क्या जवाब देगा? बाबा तो बच्चों से पूछेगा ना, बच्चे आप लोग तैयार हो मैं छुट्टी दूं उनको है? तो ऐसे ही हम जब योग में कभी कभी जब आपको ठीक जाओ तो उन पांचों तत्वों को देवताई रूप में इमर्ज कर उनको बाबा से इसी समान का अभ्यास करते हुए मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाने की सेवा कर रहा हूँ। योग के पावरफुल वाइब्रेशन दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उनको पवित्र बनाने के वाइब्रेशन दो, कभी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ शक्तिशाली बनाने के वाइब्रेशन दो। तो यदि आपने उन तत्वों की सेवा की है तो वो सदा आपके मार्ग में सहयोगी बनकर चलेंगे, साथी बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। तो ऐसे इस प्रकार से हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल समर्थ शक्तिशाली स्वमान के वाइब्रेशंस स्वमान के स्थिति में स्थित होकर और साथ साथ शुभ भावना युक्त बनाकर चले। और लास्ट पॉइंट, अपनी संकल्प शक्ति को हम क्या होता है, कई जगह हम छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं, उनको महत्व देते हैं, इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों करते हैं, तो वो हलचल का कारण बन जाते हैं वो विचार वो संकल्प। लेकिन इसकी जगह हम इन समर्थ विचारों को अपना ले कि नहीं, मान लो किसी ने गलत व्यवहार भी आपसे किया तो उसकी जगह आप ये उस व्यवहार से आपको मुक्त ना है, छूटना है प्रभाव से, तो उसकी जगह ये संकल्प करो, बाबा ने हमको ज्ञान दिया बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वही निश्चित है, वही होना है और वही सत्य है, इसलिए जब वही सत्य है वही होना है ड्रामा निश्चित है कल्याणकारी है तो फिर सोचना नेगेटिव सोचना कोई मतलब नहीं ना है? तो उस बात को स्वीकार कर लो तो आपके मन की हलचल खत्म हो जाएगी। और ऐसा हुआ हमारे साथ एक छोटा सा अनुभव, इसलिए मैं ज्ञान नहीं ज्ञान के साथ साथ एक एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा करना बनना सहज हो जाए। तो एक जगह हम गए तो वहां भट्ठी कराने, तो वहां दो दिन की भट्ठी थी, तीसरे दिन संडे का दिन था तो बहन जी ने चार जगह क्लास रख दी हमारे, और उस दिन सुबह से ही बरसात शुरू होगी जोर की बरसात। अब मैं बाबा को याद करके कहने लगा बाबा चार जगह क्लास कराने जाना और सुबह से ही बरसात है तो क्लास में कौन आएगा फिर है? तो बरसात थोड़ा बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा, अभी देखो वहां तो बंद हुई लेकिन यहां बंद नहीं हो रही बरसात, ये बाबा को योग लगा के कहने के बाद भी बरसात बंद नहीं हुई। तो हमने सोचा फिर बाबा ने वही ज्ञान दिया, चलो ड्रामा कल्याणकारी है तो कोई कल्याण होगा, हम क्यों ज्यादा सोचे, बाबा की सेवा में ना, सेवा कराने वाला तो वो है। तो ये सोचकर मैंने उस बात को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया। तो हम गाड़ी में बैठ गए बरसात के अंदर ही, वहां गए एक सेंटर पर सुबह 7 बजे, तो बहन जी ने इंट्रोडक्शन दिया परिचय दिया क्लास शुरू होने से पहले कि देखो, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद कहने लगी कि देखो आज मधुवंशी भाई आए हैं और आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा कमाल है, हम तो सोच रहे थे अच्छा नहीं हुआ, बहन जी कहते अच्छा हो गया, कैसे अच्छा हो गया जी? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती है, तो कई कंपनी वाले बनवाते हैं ना पापड़, तो धूप खिली होती है तो पापड़ बना सूख जाते हैं, आज आ गई बरसात तो किसी ने पापड़ बनाए नहीं क्योंकि पापड़ सूखेंगे नहीं, तो जो भी माताएं थी घरों में सब फ्री होगी तो सारी माताएं क्लास में आ गई। तो मैंने देखा सबसे ज्यादा क्लास माताओं से फुल, तो अच्छा हो गया ना है। तो इसलिए बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें कहीं भी थोड़ा भी कुछ मार्जिन नहीं है कि ये ठीक नहीं है ऐसे क्यों क्या नहीं, जो हो रहा है ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, जो हो रहा है वही सत्य है वही निश्चित है, उसी में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए उसको हम उसी रीति से स्वीकार कर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की हलचल में आप स्थिति को अचल अडोल बनाकर रख सकेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने विचारों को हमारे ड्रामा में हमारे सामने जो भी सीन सामने आ रहा है उसे हम स्वीकार कर चले, कभी क्वेश्चन पैदा नहीं करें क्यों हो रहा है, नहीं क्या होगा, नहीं, जो होगा अच्छा होगा, बाबा साथ है ना, कराने वाला वो है, है? रामा का ज्ञान दिया, कल्याणकारी। तो इस तरह से सभी प्रकार की हलचल से मुक्त होकर एक अचल डोल स्थिति बनाकर ऐसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में संकल्प शक्ति का प्रयोग कर विजयी बनकर और सदा आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें, बाप समान बन जाएं, तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। चलिए अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। जब भी योग करें तो कोई न कोई समान का अभ्यास करते योग करें, ऐसे नहीं कि योग में बैठ जाएं लाल लाइट आके बैठ गए हैं। योग को पावरफुल बनाना है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे विराजमान। इस अभ्यास को करते योग करेंगे।